नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
रब को जो चाहता हो नहीं एक भी नहीं, करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा नहीं एक भी नहीं। से दूर है अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है कोई उसके जैसा नहीं एक भी नहीं, चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा नहीं एक भी नहीं, जो अपनी जान दे दे नहीं एक भी नहीं, सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं अच्छा नहीं।
तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों नए नियम की पुस्तक में से गलातियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस सारा और हाजिरा की उपमा देते हुए इस बात को उसने स्पष्ट किया कि विश्वास और व्यवस्था जो स्वतंत्र और दास के बारे में था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 से अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं। आज हम इस दुनिया में जीवित हैं इस कारण से नहीं कि हम अच्छे लोग हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन इसलिए कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी वचन में से सुनते और सीखते हैं हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, किसी न किसी प्रकार की बीमारी या दबाव में है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी स्पर्श करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, उनके हर एक कमी घटियों को, त्रुटियों को आप दूर करें, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, आप हम सब की सहायता करें। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 1-4 पद तक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय होगा आत्मा के द्वारा शोधन, विश्वास के द्वारा उद्धार पाना और व्यवस्था पालन अनुग्रह से वंचित होना है। विश्वास के द्वारा उद्धार पाकर आत्मा का जीवन, आत्मा का फल उत्पन्न करता है। तो आइए हम देखें आत्मा के द्वारा शोधन। प्रस्तावना के बाद अब हम गलातियों की पत्री के तीसरे मुख्य भाग में आते हैं। पहला भाग पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों का था और हमें उसके अनुभवों से परिचित होना आवश्यक था। दूसरा भाग जो इसके बाद का है वह विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने की शिक्षा है। पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर द्वारा उपलब्ध उद्धार हो और सुसमाचार एक ही है। अब आता है व्यवहारिक बात का भाग जो आत्मा द्वारा शुद्ध किए जाने के बारे में है। धर्मी ठहरना तो विश्वास पर आधारित है और शुद्ध होना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। धर्म शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए शोधनकर्ता ठहराया गया, अर्थात परमेश्वर हमें मसीह में संपूर्ण देखता है। आप चाहे स्वयं के प्रयासों द्वारा कितने भी सदाचारी क्यों ना हो जाएं, आप परमेश्वर के मानदंड में खरे नहीं उतरेंगे। इस जीवन में आप मसीह के सदृश कभी नहीं हो सकते। केवल प्रभु यीशु ही था जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, मती रचि सुसमाचार 3:17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परंतु विश्वासियों की देह कलिसिया मसीह यीशु में अवस्थित की गई है, वही इस देह का सिर है। हम विश्वासी मसीह की देह हैं और हमें इस संसार में उसका प्रतिनिधित्व करना है। मेरे मित्रों, शोधन पवित्र आत्मा का कार्य है। इस भाग में हम आत्मा और देह का परस्पर विरोध देखेंगे। यह या तो स्वयं करो का विश्वासी जीवन है या फिर कोई और आपके लिए यह काम करे, परंतु मसीह का कार्य है आपके द्वारा करना। इस भाग में हम स्वतंत्रता की तुलना दासत्व के साथ देखेंगे और आपको इसे सुव्यवस्थित रूप में क्रमवार देखना है। मैं इसे नागरिक नियमों के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुभव के साथ आपको समझाता हूं, क्योंकि हम सब नियमों में बंधे हुए हैं। एक दिन मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए एक कोने में पहुंचा जहां पर लिखा था ठहरो। बोर्ड देखकर मैं रुका। बहुत सुबह का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था, अतः मैं धीरे से आगे बढ़ गया। उसी समय पुलिस वाला मेरे पीछे आ गया। उसने कहा, आपने वह बोर्ड नहीं देखा? मैंने कहा, मैंने बोर्ड तो देखा परंतु आपको नहीं देखा। उसने कहा, आप जानते हैं कि ठहरो का अर्थ क्या है? और उसने मुझे नियमों पर भाषण सुना दिया। ठहरो का अर्थ है ठहरो, बस। मैं तो उसका अर्थ जानता हूं परंतु मैं उसका पालन नहीं कर रहा था। मेरे कहने का अर्थ है कि नियम आपको दास बनाते हैं, मेरा विश्वास करें। ठहरो का अर्थ है ठहरो। मैं उसकी हर एक बात से सहमत था परंतु एक बात से नहीं कि मुझे जुर्माना देना पड़े। मैं उससे बहस करने लगा। वह एक भला मनुष्य था। वह मेरी बात समझ गया और बोला, मैं आपकी बात स्वीकार करके आपको छोड़ देता हूं कि आसपास कोई वाहन नहीं था, परंतु आगे से आप सावधान रहेंगे और ठहरो की चेतावनी पर अवश्य ही रुकेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं ऐसा ही करूंगा। तब से मैं चाहे रविवार की भोर ही क्यों ना हो, मैं सदैव ठहरो की चेतावनी पर रुक जाता हूं। यह विधि विधान है। हम सब इस उदाहरण को अवश्य ही समझते हैं। विश्वास द्वारा उद्धार और व्यवस्था पालन अनुग्रह से वंचित होने की भूल है। पौलुस मसीह में प्राप्त हमारी स्वतंत्रता से आरंभ करता है। इन 15 पदों में उसका विषय यही है। विश्वास द्वारा उद्धार पाकर व्यवस्था पालन करने की भूल अनुग्रह से वंचित करवाती है। अनुग्रह से वंचित होने का अर्थ यही है कि आप विश्वास द्वारा उद्धार पाकर व्यवस्था पालन के स्तर पर गिरकर जीवन निर्वाह करते हैं। जी हाँ, इस अध्ययन में हम इसी का उदाहरण देखेंगे। आइए आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। वह कहता है कि व्यवस्था की अपेक्षा हम विश्वास द्वारा उद्धार पाते हैं, अतः व्यवस्था पालन विश्वासी का जीवन नहीं है। पौलुस का कहना है कि हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है, अतः हम इसी जीवन में आगे बढ़ें। अनुग्रह पवित्र आत्मा का अंतरवास वरन भरपूरी प्रदान करता है कि हम व्यवस्था की अनिवार्यताओं से ऊपर उठकर जीवन जिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु में विश्वास करने पर कि वह हमारा उद्धारक है, उद्धार करता है, हम इन सब बातों को प्राप्त करते हैं। मसीह यीशु में ही हमें सब कुछ प्राप्त है, शोधन और उद्धार। मुझे न बताएं कि मुझे कोई और आशीष की भी आवश्यकता है। मसीह के पास आकर मुझे हर एक आवश्यक वस्तु मिल गई है। पौलुस कहता है कि मसीह में मुझे सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। तो आइए हम उसमें विश्वास करके उस पर अपना भरोसा रखें। हम विधि विधान और रटे हुए नियमों के पालन को त्याग कर दें। हमें मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त है। वह हमें किसी विधि विधान में नहीं फंसाता है। जी हाँ, हम जीवन का नियम 10 आज्ञाओं को नहीं बनाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हम 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करें, तू हत्या मत कर, तू चोरी मत कर आदि। इनका उल्लंघन तो हमें वैसे भी दंड का भागी बनवाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि हमें इससे ऊंचा जीवन जीने की बुलाहट है, जहां हमें मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त है। यह स्वतंत्रता एक नियम नहीं, जीवन का सिद्धांत है। मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरा जीवन आचरण से प्रभु यीशु को प्रसन्नता प्राप्त होना है। यही प्रभु यीशु में हमारी स्वतंत्रता है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में हम आगे पढ़ते हैं, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। ध्यान दीजिए, खतना व्यवस्था का दासत्व था। वह एक चिन्ह था जो यह दर्शाता था कि आप किसी विशेष समुदाय के अंग हैं। इसी प्रकार विश्वासियों को भी कोई विशेष चिन्ह पहनना चाहिए कि प्रकट हो कि वे विश्वासी हैं। परंतु पौलुस कहता है कि यदि व्यवस्था का चिन्ह धारण किया जाए तो खतना है, तो मसीह यीशु से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक घरेलू उदाहरण देना चाहता हूं। एक शक्तिवर्धक बूटी का विज्ञापन पढ़कर लोग उसे पीना आरंभ कर देते हैं। अब एक मनुष्य जिसे उस बूटी से बहुत लाभ हुआ, उसका प्रचार करते हुए कहता है, मैंने 513 बोतलें वह बूटी पी और अब मैं जो चलने में कठिनाइयों का सामना करता था, चलना तो क्या उड़ता हूं, परंतु उसके साथ मैं भोजन में यह विशेष वस्तुएं भी खाता था। मेरे मित्रों, यह अंतिम वाक्य ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या वह उस बूटी से स्वस्थ हुआ था या इस विशेष भोजन से? ज्यों ही आप उपचार में अपना सूत्र जोड़ देते हैं, त्यों ही संदेह उत्पन्न होने लगता है। ध्यान दीजिए, पौलुस क्या कहता है, आप मसीह में विश्वास के साथ कुछ और भी करना चाहते हैं तो आपका उद्धार संभव नहीं। यदि आप खतना करवा लें या अपने उद्धार को किसी अभ्यास पर आधारित कर दें तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। वह आपको लाभ कैसे पहुंचाएगा? जब आप उद्धार के लिए उस पर विश्वास की अपेक्षा अपना सूत्र भी अपना रहे हैं। मुझे डॉक्टर लुइस स्पेरी सॉफर की बात बहुत प्रभावित करती है। मैं मसीह में ऐसा विश्वास करना चाहता हूं कि जब उसकी उपस्थिति में वह मुझसे पूछे, तू यहाँ क्यों है, तो मैं उससे कह पाऊं, मैंने तुझ पर उद्धारकर्ता का विश्वास किया है, इसलिए मैं यहाँ हूं। यदि वह कहे, यह तो सराहनीय है, परंतु तूने क्या किया है? मुझे पता चला है कि तू एक बाइबल अध्ययन कॉलेज या सेमिनारी का अध्यक्ष था और तूने बपतिस्मा भी लिया है। तू कलीसिया का भी सदस्य था। अपनी सेवा में तूने अनेक अच्छे काम भी किए हैं। तब मैं उससे कहूंगा, यह सच है, परंतु मैंने उनमें उद्धार के निमित्त कभी विश्वास नहीं किया। मैंने तो केवल तुझ में ही विश्वास किया। हे मेरे प्रभु, विश्वास मैंने तुझ पर किया है। मेरे मित्रों, क्या आप मसीह में ऐसा ही विश्वास करते हैं? पौलुस अति स्पष्ट एवं दृढ़ शब्दों में कहता है, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ ना होगा। जी हाँ, यदि आप मसीह की अपेक्षा अन्य किसी भी बात पर विश्वास करेंगे तो आप विश्वासी नहीं हैं। गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, आप व्यवस्था से केवल अपनी इच्छा की बातें नहीं कर सकते, आप उसमें व्यक्त दंड और अनेक बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। या तो आप संपूर्ण व्यवस्था का पालन करें या किसी का भी नहीं। मैं प्रसन्न हूं कि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, मुझे मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि उसे सदा प्रसन्न रखने में मुझे समस्या होती है, परंतु वही एकमात्र है जिसे मैं प्रसन्न करने का प्रयत्न या प्रयास करता हूं। मैं किसी भी विधि विधान का पालन नहीं करता हूं। मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हम गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यदि आप मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं तो व्यवस्था पालन के निम्न स्तरीय जीवन में जीने के कारण आप अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। जी हाँ, यही अनुग्रह से गिर गए का वास्तविक अर्थ है। मैंने एक बार अपने अध्ययन काल में एक धर्म विज्ञान के विद्यार्थी को कहते सुना, अनुग्रह से गिरना एक धर्म शिक्षा है जिस पर मेथोडिस्ट कलीसिया विश्वास करती है और प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पालन करती है। अनुग्रह से गिरने का अर्थ यह नहीं कि पाप में गिरना या व्यवहार की निरंकुशता की आपका उद्धार छीन लिया जाए और आपको नए सिरे से उद्धार पाना पड़े, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अनुग्रह से गिरना उद्धार पाकर सदाकालीन उद्धार के विपरीत है। जी हाँ, दोनों ही अभिव्यक्तियां दुर्भाग्यशाली शब्द हैं। पौलुस इस शेष अध्याय में अनुग्रह से गिरने पर ही प्रबोधन करता है। रोमियो को लिखे पत्र में भी वह इसी विषय पर चर्चा करता है। रोमियो के पत्र में वह मनुष्य के संपूर्ण खालीपन की चर्चा करने से आरंभ करता है। धार्मिकता से रहित, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट, सड़े हुए फल की नाई किसी काम का नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के समक्ष एक पापी है और रोमियो की पत्री में वह मनुष्य को परमेश्वर की सेवा में व्यक्त करता है और उसे कुछ करने का आदेश देता है। मेरे मित्रों, विश्वासी पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए अलग है, उसे परमेश्वर का आज्ञाकारी रहना है। जी हाँ, परमेश्वर के दो सामर्थी कार्य हैं जो मनुष्य की पतित अवस्था और मनुष्य द्वारा परमेश्वर की सेवा के मध्य आते हैं। ये हैं शोधन और उद्धार। जैसा कि हम देख चुके हैं, उद्धार विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने से है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। शोधन का अर्थ है उद्धार पाने के बाद एक नए जीवन स्तर पर आना। मेरे विचार में सबसे बड़ा भ्रम यह मानना है कि मसीही जीवन में सेवा आवश्यक है, अर्थात आपको तुरंत ही व्यस्त हो जाना है। आरंभिक कलीसिया अपने जीवन शैली के संबंध में बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि उनका जीवन संसार में मसीह की गवाही था। आज संसार कलीसिया को देखकर अनदेखा करती है क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। जी हाँ, दीमकों की नाई व्यस्त हैं। हमारे जीवन हमारी गवाही को सहारा नहीं देते हैं। भलाई करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा हमें भला जीवन जीना आवश्यक है। यदि हम मसीह को प्रसन्न करते हैं तो हमारे काम स्वयं भले हो जाते हैं। मेरे विचार में गलातिया प्रदेश और रोम की कलीसियाओं को लिखे पत्रों में अन्य किसी बात की अपेक्षा शोधन पर सबसे अधिक चर्चा की गई है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर एक उद्धार प्राप्त पापी को भला कैसे बनाता है, उसे नया स्वभाव प्रदान करके? क्या उसे व्यवस्था पालन करना होगा? जी नहीं और कदापि नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यवस्था का उल्लंघन करे, परंतु उसे एक ऊंचे स्तर के जीवन के लिए बुलाया गया है। पुराने स्वभाव में कोई अच्छाई नहीं है क्योंकि वह पतित जीवन है। पौलुस को इसका बोध हो गया था और उसने अपने अनुभव से यह भी जान लिया कि नए स्वभाव में अपना सामर्थ्य नहीं है। रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में उसने उद्धार के विषय में कहा, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आगे वह यह भी कहता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसके बाद वह एक उद्धार प्राप्त मनुष्य पुकारता है, रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उसे अपने उद्धार से वंचित होने का डर नहीं है, परंतु वह एक हारा हुआ विश्वासी है। परमेश्वर एक नया सिद्धांत हमें देता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि यह नया सिद्धांत आत्मा का फल है। इस रीति मसीही जीवन जीना विश्वासियों के लिए ऐसा है जैसा चांद पर रहना। उन्होंने ऐसे जीवन की कभी भी कोई आशा नहीं की थी। संभवतः उन्होंने ऐसी संभावना के बारे में सुना भी नहीं था। मेरे मित्रों, यही वह जीवन है जो वह हमसे, मुझसे और आपसे चाहता है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हमें अनुग्रह के अधीन ही जीवन जीना है, न कि व्यवस्था के। मेरे मित्रों, यहाँ पर पौलुस इस पत्री के द्वारा मुझे और आपको स्पष्ट करना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा से है और हमें अव्यवस्था के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं ताकि हम व्यवस्था के गुलाम न बने, उसके दास न बने, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को यापन कर सकें। आज मुझे और आपको इस अध्ययन के द्वारा से इस बात को सोचना और समझना है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि आज हम व्यवस्था से फिरकर परमेश्वर के उस उद्धार की ओर आ जाएं, ताकि हम अपने जीवन में उस महान शांति को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रखा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही इस बात को समझ लिया है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि हम स्वतंत्रता का जीवन जिए और फिर से उस दासत्व अर्थात उस पाप में जीवन में न जाएं। आइए आज हम इस वचन के द्वारा निर्णय लें और परमेश्वर से कहें कि हम इस जीवन में उसके अनुसार से जिएंगे, ताकि हम स्वतंत्र रूप से परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। करता हूँ माफ ऐसे नहीं, एक भी नहीं, देता नजात ऐसे, देता नजात वैसे नहीं, एक भी।